नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, हैंड्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जो आओ फेरेरा की व्यावहारिक तकनीकी मार्गदर्शिका है, जिसका उद्देश्य संगठनों में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और ऑफिस 365 के माध्यम से सहयोग को अधिक व्यवस्थित बनाना है। यह पुस्तक केवल चैट या वीडियो मीटिंग चलाना नहीं सिखाती, बल्कि टीम्स को आधुनिक कार्यस्थल के साझा कार्य केंद्र के रूप में देखती है। इसमें आरंभिक सहयोगी सुविधाओं से लेकर टीम, चैनल, टैब, बैठक और अनुमतियों के प्रबंधन तक क्रमिक सीखने का ढांचा मिलता है। पुस्तक का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह टीम्स को अलग उत्पाद नहीं मानती, बल्कि शेयरपॉइंट, पावर एप्स और पावर ऑटोमेट जैसे माइक्रोसॉफ्ट सेवाओं से जुड़े परिवेश के रूप में समझाती है। निजी और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा, संसाधनों का संगठन तथा वास्तविक कार्यस्थितियों में उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान है, इसलिए इसका स्वर उपयोगकर्ता निर्देशिका और प्रशासनिक संदर्भ पुस्तक दोनों का है। यह उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो टीम्स को अपनाने के साथ स्पष्ट कार्यप्रणाली, उचित नियंत्रण और बेहतर डिजिटल सहयोग स्थापित करना चाहते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, टीम्स को चैट ऐप नहीं, साझा कार्य केंद्र के रूप में समझना। पुस्तक का आधारभूत विचार यह है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मूल्य केवल संदेश भेजने या वीडियो कॉल करने में नहीं है। इसका वास्तविक उपयोग तब उभरता है जब किसी विभाग, परियोजना या समुदाय की बातचीत, फाइलें, बैठकें और आवश्यक अनुप्रयोग एक ही कार्यस्थल में संगठित हों। इस दृष्टि से टीम्स ईमेल की बिखरी हुई श्रृंखलाओं और अलग अलग फोल्डरों में रखी सामग्री का विकल्प नहीं, बल्कि उन्हें संदर्भ सहित जोड़ने का माध्यम बनता है। पुस्तक पहले उन मूल सुविधाओं पर ध्यान देती है जिनसे उपयोगकर्ता इस वातावरण में सहज हो सके, जैसे चैट, चैनल, टैब और साझा सामग्री। यह क्रम जरूरी है क्योंकि तकनीक की उपलब्धता अपने आप सहयोग की गुणवत्ता नहीं बढ़ाती। यदि वार्तालाप का विषय, दस्तावेज का स्थान और सदस्य की भूमिका स्पष्ट न हो तो टीम्स भी सूचना के शोर का स्रोत बन सकता है। फेरेरा की व्यावहारिक दिशा यह संकेत देती है कि हर काम के लिए समान संचार स्थान चुनना उचित नहीं है। त्वरित निजी समन्वय के लिए चैट, दीर्घकालिक विषयगत चर्चा के लिए चैनल और बार बार उपयोग होने वाले संसाधन के लिए टैब अधिक उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार पुस्तक उपयोगकर्ता को सुविधाएं याद कराने के बजाय काम के संदर्भ के अनुसार सहयोग की संरचना चुनना सिखाती है। यही संगठनात्मक अपनाने की पहली शर्त है। दूसरा, टीम, चैनल और टेम्पलेट से काम की संरचना बनाना। टीम्स में प्रभावी सहयोग का बड़ा हिस्सा सही संरचना बनाने पर निर्भर करता है और पुस्तक टीमों तथा चैनलों के निर्माण और प्रबंधन को इसी कारण प्रमुख विषय बनाती है। एक टीम सामान्यतः सदस्यों, साझा उद्देश्य और संबंधित संसाधनों का दायरा तय करती है, जबकि चैनल उस दायरे के भीतर विषय, कार्यधारा या परियोजना के अनुसार चर्चा विभाजित करते हैं। यह अंतर समझना व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक टीमें बनाने से लोगों को सामग्री खोजने में कठिनाई होती है, जबकि एक ही टीम में असंबद्ध विषय भर देने से चैनल अव्यवस्थित हो जाते हैं। निजी और सार्वजनिक टीमों व चैनलों का प्रबंधन भी पुस्तक के दायरे में है। इसका अर्थ केवल दृश्यता निर्धारित करना नहीं, बल्कि यह तय करना है कि किस जानकारी को सीमित रखना चाहिए और किस सहयोग में व्यापक भागीदारी लाभकारी है। दूसरे संस्करण में टीम्स टेम्पलेट का समावेश इस प्रशासनिक सोच को आगे बढ़ाता है। टेम्पलेट दोहराए जाने वाले विभागीय या परियोजना ढांचों को मानकीकृत कर सकते हैं, जिससे हर नई टीम शून्य से बनाने की आवश्यकता घटती है। पर मानकीकरण का अर्थ कठोरता नहीं होना चाहिए। पुस्तक से निकलने वाला व्यावहारिक निष्कर्ष यह है कि नामकरण, सदस्यता, चैनल, उद्देश्य और संसाधन व्यवस्था जैसे नियम पहले तय हों, फिर उन्हें टेम्पलेट के माध्यम से दोहराया जाए। इससे विस्तार के साथ भी वातावरण समझने योग्य रहता है। तीसरा, शेयरपॉइंट और पावर प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कार्यप्रवाह। पुस्तक की विशिष्टता माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को ऑफिस 365 के व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़कर समझाने में है। टीम्स में साझा की गई फाइलें और सहयोग केवल संदेशों तक सीमित नहीं रहते, क्योंकि शेयरपॉइंट दस्तावेज प्रबंधन और साझा सामग्री की आधारभूत भूमिका निभाता है। इस संबंध को समझने से उपयोगकर्ता फाइलों को बातचीत में संलग्न वस्तु मानने के बजाय नियंत्रित और सहलेखित संसाधन के रूप में देख सकता है। पुस्तक पावर एप्स और पावर ऑटोमेट के साथ संबंधों पर भी जाती है। पावर एप्स के माध्यम से किसी संगठन की सरल आंतरिक प्रक्रिया को टीम्स के कार्यस्थल के निकट लाया जा सकता है, जबकि पावर ऑटोमेट दोहराए जाने वाले चरणों, सूचना प्रवाह या अनुमोदन जैसी गतिविधियों को स्वचालित करने में सहायक हो सकता है। यहां मुख्य बात यह नहीं कि हर प्रक्रिया को स्वचालित किया जाए, उपयोगी स्वचालन उन कामों के लिए होता है जिनमें स्पष्ट नियम हो, बार बार एक जैसे कदम हो और देरी का कारण मैनुअल हस्तांतरण हो। टीम्स इन सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता का परिचित प्रवेश बिंदु बन सकता है। इससे लोगों को अलग अलग पोर्टलों में जाने की जरूरत कम हो सकती है, पर डिजाइन करते समय स्वामित्व, डेटा स्रोत और अनुमतियों पर ध्यान आवश्यक रहता है। पुस्तक का व्यावहारिक दृष्टिकोण इस एकीकरण को तकनीकी प्रदर्शन के बजाय दैनिक काम को सरल बनाने के साधन के रूप में रखता है। चौथा, अनुमतियां और सुरक्षा। सहयोग की उपयोगिता का अनिवार्य आधार खुला सहयोग और नियंत्रित पहुंच दोनों के बीच संतुलन बनाना माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्रशासन की केंद्रीय चुनौती है। पुस्तक निजी और सार्वजनिक टीमों तथा चैनलों के संदर्भ में अनुमतियों और सुरक्षा मुद्दों को शामिल करती है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि टीम्स में संवाद, दस्तावेज, बैठक सामग्री और अनुप्रयोग एक साथ आ सकते हैं। गलत सदस्यता या अस्पष्ट पहुंच व्यवस्था का प्रभाव केवल एक संदेश तक सीमित नहीं रहता। दूसरी ओर, हर चीज को अत्यधिक प्रतिबंधित करने से लोग अनुमोदन प्रक्रियाओं और वैकल्पिक अनौपचारिक माध्यमों की ओर जा सकते हैं, जिससे संगठन की दृश्यता और नियंत्रण दोनों कमजोर पड़ते हैं। पुस्तक का उपयोगी संकेत यह है कि सुरक्षा को बाद में जोड़ा जाने वाला प्रशासनिक चरण नहीं माना जाना चाहिए। टीम बनाते समय ही उसके उद्देश्य, मालिकों, सदस्यों, बाहरी सहभागिता की जरूरत और सामग्री की संवेदनशीलता पर विचार होना चाहिए। मालिकों की भूमिका विशेष रूप से अहम है, क्योंकि वे सदस्यता और दिनचर्या के नजदीक होते हैं। फिर भी संगठन स्तर पर स्पष्ट नीतियां जरूरी हैं, ताकि समान स्थितियों में अलग अलग टीमों के लिए विरोधाभासी फैसले न हो। इस विषय में पुस्तक तकनीकी नियंत्रणों को सहयोग के विरुद्ध नहीं रखती, इसके बजाय उचित पहुंच को भरोसेमंद साझाकरण की शर्त के रूप में प्रस्तुत करती है। परिणाम स्वरूप, पाठक सुविधाजनक व्यवस्था और जवाबदेह शासन के बीच संबंध को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकता है। अंत में बैठकों, कस्ट मैप्स और स्वचालन से विस्तृत उपयोग परिदृश्य पुस्तक टीम्स के प्रयोग को सामान्य कार्यालयी चैट तक सीमित नहीं रखती। इसमें बैठकों की योजना और प्रबंधन, लाइव इवेंट और वेबिनार जैसे संचार प्रारूपों का उल्लेख है। इन सुविधाओं का महत्व उनके तकनीकी नामों से अधिक उस काम में है, जिसे वे संभव बनाती हैं। नियमित टीम बैठक के लिए प्रतिभागी समन्वय और साझा सामग्री जरूरी होती है, जबकि बड़े प्रसारण या वेबिनार में प्रस्तुति, सहभागिता और आयोजन नियंत्रण की जरूरत अलग हो सकती है। पुस्तक इन विविध स्थितियों को टीम्स की व्यापक संचार भूमिका के हिस्से के रूप में रखती है। आगे, कस्टम एप्स। पावरशेल स्वचालन और डेवलपर पोर्टल के माध्यम से बिना कोड लिखे टीम्स ऐप बनाने जैसी क्षमताएं बताती हैं कि मंच को संगठन की प्रक्रियाओं के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। Q&A मेकर और पावर वर्चुअल एजेंट्स के जरिए चैटबॉट तैनात करने का विषय भी इसी विस्तार का उदाहरण है। ऐसे बॉट बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों या प्रारंभिक मार्गदर्शन में उपयोगी हो सकते हैं, बशर्ते उनकी जानकारी अद्यतन रहे और जटिल मामलों में मानव सहायता तक पहुंच स्पष्ट हो। शिक्षा, फ्रंटलाइन कार्य और निजी उपयोग के उदाहरण यह भी दिखाते हैं कि हर उपयोगकर्ता समूह की जरूरत समान नहीं होती। इसलिए पुस्तक का व्यापक संदेश है कि सुविधा चुनने से पहले उपयोग का परिदृश्य, दर्शक और संचालन जिम्मेदारी तय की जाए। निष्कर्ष में, हैंड्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स उन प्रशासकों, प्रबंधकों और सामान्य टीम सदस्यों के लिए उपयुक्त पुस्तक है, जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का उपयोग केवल बुनियादी संदेश और बैठक स्तर से आगे ले जाना है। नए उपयोगकर्ताओं को इससे टीम, चैनल, चैट, टैब और साझा कार्य की व्यावहारिक समझ मिल सकती है। वहीं टीम्स के मालिकों और सूचना प्रौद्योगिकी जिम्मेदारों के लिए इसमें संरचना, सदस्यता, निजी तथा सार्वजनिक स्थानों और सुरक्षा संबंधी विचार उपयोगी हैं। जिन संगठनों ने टीम्स अपना तो लिया है, लेकिन अब भी फाइलों, वार्तालापों और प्रक्रियाओं के बिखराव से जूझ रहे हैं, उनके लिए पुस्तक विशेष रूप से प्रासंगिक है। इसका लाभ केवल किसी एक फीचर का संचालन सीखने में नहीं, बल्कि टीम्स को शेयरपॉइंट, पावर एप्स और पावर ऑटोमेट के साथ जोड़कर काम की पूरी व्यवस्था देखने में है। समान श्रेणी की त्वरित आरंभ मार्गदर्शिकाएं अक्सर इंटरफेस या अलग अलग सुविधाओं पर रुक जाती हैं। यह पुस्तक उस स्तर से आगे जाकर सहयोग की संरचना, प्रशासनिक नियंत्रण, एकीकरण और विस्तार योग्य उपयोग मामलों को एक साथ रखती है। टेम्पलेट, पावरशेल, कस्टम एप्स और चैटबॉट जैसे विषय इसे केवल अंतिम उपयोगकर्ता के लिए लिखी पुस्तक से अधिक व्यापक बनाते हैं। फिर भी इसका व्यावहारिक ट्यूटोरियल आधारित स्वर इसे अत्यधिक सैद्धांतिक होने से बचाता है। तकनीक के बदलते रूप के कारण पाठक को नवीनतम माइक्रोसॉफ्ट दस्तावेज भी देखने चाहिए, पर सहयोग और शासन के मूल सिद्धांत इस पुस्तक को उपयोगी संदर्भ बनाए रखते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जो फेरेरा, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।